Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna तो हम लोग बहुत दिन पहले से पृथ्वी महाराज के चरित्र के बारे में सुनते आ रहे थे। अभी पृथ्वी महाराज के वंशावली के ऊपर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज पृथ्वी का एक पुत्र था विजिताश्व, जो जब इंद्र ने यज्ञ क्षेत्र से घोड़ा का चोरी कर लिए थे, उस समय विजिताश्व ने उस घोड़े को वापस उस यज्ञ में लाया था। इंद्र जब इस घोड़ा को चोरी कर रहा था तो उस समय अंतर्धान की अवस्था में वो इस कार्य कर रहा था, परंतु जो विजिताश्व है वो उस अंतर्धान के अवस्था में भी उस घोड़ा को वापस लाकर फिर यज्ञ मंडप में स्थापित किए। तो इसके कारण विजिताश्व को भी अंतर्धान कहा जाता है। इंद्र की कृपा से उनको अंतर्धान को उपाधि प्राप्त हुई। यद्यपि उनको ज्ञान था कि इंद्र जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, फिर भी विजिताश्व ने या अंतर्धान ने उनको बध नहीं किया। वो चाहता तो कर सकता था, उनको साप दे सकता था, परंतु ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान था कि इंद्र जो है भगवान का सेवक है, भगवान का भक्त है। इसके कारण वह उनसे कुछ प्रतिकार नहीं किए। परंतु इंद्र बाद में उनके इंद्र के आशीर्वाद से उनको अंतर्धान का उपाधि प्राप्त हुआ। तो अंतर्धान महाराज पृथ्वी का पुत्र विजिताश्व या अंतर्धान बहुत ज्ञान में, भक्ति में, योग शक्ति में, हर कार्य में वो निपुण थे, और राज कार्य संपादन करने के लिए भी वो बहुत उपयोगी थे, योग्य थे। इसी के कारण महाराज पृथ्वी ने अंतर्धान को इस राज्य का भार सौंप दिया। परंतु अंतर्धान ने उस राज्य का शासन करने के लिए, राज्य चलाने के उनका मन में इतना उत्साह नहीं था, और वो उनको ज्ञान था कि मेरा जो भाई है वो भी इस राज्य को चला सकते हैं, योग्य है। तो उनके भाई के प्रति, छोटे भाई को प्रति श्रद्धा, प्रेम होने के, स्नेह होने के कारण वो उस राज्य को उनके छोटे भाई को बांट दिए। चार पार्श्व, एक एक पार्श्व करके एक एक साइड उनको राज्य शासन के लिए दे दिए। तो पूर्व पार्श्व को उनका भाई हरैयाख्य को दिए, दक्षिण पार्श्व धूम्राख्य, पश्चिम पार्श्व ब्रीक और उत्तर पार्श्व द्रविण को दिए। और अंतर्धान का एक तीन पुत्र हुए। तीन पुत्र जो है वो अग्निदेव का अंश थे, एक देवता भी थे। उनका नाम है पावन, पावमान और सूची, तीन पुत्र है और वो अग्नि का अंश थे। और उनका दूसरी एक पत्नी भी थी, उनका नाम है नभस्वती। उनसे छह पुत्र उत्पन्न किए, एक बरिषद, दो गया, तीन शुक्ला, चार कृष्णा, पांच सत्य और छह जीतव्रत। ये छह पुत्र उनका उत्पन्न हुआ। तो उसमें से बरिषद जो है वो बड़ा है, जो कि आगे प्राचीन बरिषद के नाम में विख्यात है या होने वाला है, जो हम आगे पढ़ेंगे, विख्यात हुआ है, प्राचीन बरिषद कहते हैं। तो ये प्राचीन बरिषद जो है बहुत बड़ा योद्धा भी है और योग सिद्धि में भी पारंगम है और कर्मकांड में भी निपुण है। इसके कारण उन्हें प्रजापति का पद भी प्राप्त हुआ। प्रजापति के रूप में सारा विश्व में शासन किए और उनका एक मुख्य कार्य था कि वो कहीं भी हर जगह में वो यज्ञ संपन्न करते थे। एक जगह यज्ञ संपन्न किए, फिर वहां समाप्त हुआ, फिर दूसरा जगह चालू कर दिए। इस प्रकार हर जगह में वो यज्ञ करते रहते, क्योंकि उनके पास उस समय उतना शुद्धता था यज्ञ कार्य करने के लिए। जो उपयोगी पदार्थ है उनके पास मौजूद था, इसके कारण वो हजारों यज्ञ संपन्न किए हैं लोगों का कल्याण के लिए। तो उस समय वो यज्ञ कर सकते थे क्योंकि वो सही सुविधा उनके पास उपयुक्त था। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अभी बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए, फिर भी एक असमृद्ध यज्ञ करने के लिए उनको भारी पड़ गया। इतना शक्तिशाली धनशाली होने के कारण, और ये प्राचीन बरिषद या बरिषद उनसे कई गुण ज्यादा अधिक कर्मकांड में लिप्त थे और यज्ञ कार्य भी संपन्न करते। तो प्रपाद भी अपना तात्पर्य में लिखते हैं कि प्राचीन बरिषद जो है उस समय वो इतना सारे यज्ञ करते थे, कहीं भी जाते थे सिर्फ यज्ञ करते थे और कुछ काम ही नहीं था उनके पास लोगों का कल्याण के लिए। उसी प्रकार इस कलयुग में यद्यपि बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने के लिए हमारा पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कलयुग में कली के प्रभाव के कारण जीवात्मा में शुद्धता नष्ट हो गई है। सिर्फ जीवात्मा के अंदर दोष ही दोष है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। इसीलिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये कलियुग जो है यद्यपि कली का कलह का भंडार है, फिर भी इस कलियुग में एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। जब हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे तो इस कलयुग का जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। तो हम लोग इसके का इसीलिए कहीं भी हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ करने के लिए कई ज्यादा अर्थ की आवश्यकता नहीं है, कोई स्थान की मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाओ आप, संकीर्तन जगह कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हुए लोगों को हरिनाम बांट सकते हैं। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर वो कीर्तन किया, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। तो इस प्रकार परीक्षित भरिषत ने बहुत बड़ा कर्मकांड होने के कारण वो इस प्रकार लोगों का कल्याण करते थे। तो भरिषत जो है इस श्लोक में भरिषत ब्रह्मा जी ने स्वयं जो देवादिदेव ब्रह्म जो सारा संसार सृष्टि करते हैं उनका आदेश से भरिषत को आदेश दिया गया था कि तुम समुद्र की कन्या सतधृति से विवाह करो। तो सब सतधृति से विवाह करने के लिए उनको ब्रह्मा जी से प्रेरणा प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उसके साथ सतधृति का विवाह का तैयार हो गया। इस श्लोक में सतधृति का तो गुण के बारे में वर्णन किया गया है। जय सतधृति जो है बहुत सुंदर थे, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधान से अलंकृत श्लोक में प्रभुपाद ने सोलंकृत शब्द जो है उस शब्द के ऊपर ज्यादा महत्व दिए। सोलंकृत शब्द ये सूचित करता है अगर समाज में कहीं नारी का विवाह होता है तो उनको अलंकार से अलंकृत किया जाता है, वस्त्र नया वस्त्र बहुत सारे अलंकार से अलंकृत किया जाता है विवाह के समय। तो ये हमारे संस्कृति में रिवाज है। जब एक नारी को अलंकृत किया जाता है गहना से तो वो अतीव सुंदर लगते हैं, स्वाभाविक है। और कोई अच्छा से अपने को सजाए अलंकृत कराए तो सुंदर लगेगा ही, तो वो इतना सुंदर थे जब वो गहना से अलंकृत होकर यज्ञ में फेरे ले रहे थे तो उनको अग्निदेव देखकर आकर्षित हो गए। पहला जमाना में हर कोई अपने को अलंकृत करते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे भागवत में है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये लोग राक्षस थे फिर भी वो अपने को सजाते थे, मुकुट पहनते थे, कुंडल पहनते थे, करधनी पहनते थे। तो जितना गहना स्त्री उपयोग स्त्री के उपयोग में आता था उतना वो लोग भी यूज करते थे, व्यवहार करते थे। वैसे हिरण्याक्ष जो गहना जो कुंडल धारण करता था वो बहुत बड़ा था। ऐसे शास्त्र में आता है एक बार रावण ने जब राम रावण के बीच में युद्ध हो रहा था उसी समय रावण ने बलि महाराज के पास आया था सहायता के लिए सूतल लोग कि आप आओ मेरे साथ मेरा साथ दो ताकि राम श्री राम से आप युद्ध करो। तो तो बलि महाराज उनको कहा कि अच्छा ठीक है तुम अंदर आओ, उनको अंदर लेके गए। तो उनका घर के अंदर, भवन के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ जैसे थे। तो उनको दिखाया, बोले ये क्या देख रहे हो? हाँ ये दिखता है कोई सोना का पहाड़ जैसे दिखता है छोटा सा। बोले इसको तुम उठा। तो देखे हंसने लगा, अरे मैं हिमालय को उठाया, हिलाया उनको, जो शंकर जी से देवादेव महादेव वहां विराजमान रहते हैं, शंकर जी के साथ मैंने हिलाया, अरे छोटा सा पहाड़ इसको मैं नहीं उठा सकता। तो बलि महाराज बोले ठीक है तुम पहले उठा के तो देखो, फिर बात करेंगे युद्ध का, पहले इस कार्य करके दिखाओ मुझे। तो गया, जब उठाने लगा उसको उठा नहीं पाए, तो आश्चर्य हो गए, बोले क्या चीज है? बलि महाराज बोले ये क्या पता है, ये मेरा पूर्वज जो हिरण्यकश्यप है उसका कुंडल है, वो कान में पहन कर युद्ध करते थे, इतना बड़ा है, कान में पहन कर एक नहीं एक ऐसे दो पहन कर युद्ध करते थे, और तुम इस कुंडल नहीं उठा पाते हो, तुम श्री राम भगवान से युद्ध करने के लिए आए, जाओ निकलो यहां से जल्दी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि उस समय जो राक्षस लोग भी गहना परिधान करते थे, कुंडल पहनते थे या मुकुट पहनते थे, वो बहुत महंगा सोने का था। इसी प्रकार जब एक नारी को अलंकृत किया जाता है तो वो सुंदर लगते हैं। उस समय तो गहना में ही जब विवाह उत्सव होता था, गहना के द्वारा हम सजाते थे, और इतना सजाते थे कि उस स्त्री जो है वो दिखते नहीं थे, उनका शक्ल उनका शरीर आप देख ही नहीं सकते, और साड़ी भी थे, साड़ी में मुंह पे भी साड़ी लग रहता था, कहीं भी आप सिर्फ उनका चरण को देख सकते हैं, पाद से ही पता चलते हैं। तो क्योंकि उस समय संस्कृत थे, जब विवाह के पश्चात ही वो उनको कोई देख सकता था, तब तक वो इस प्रकार रहते थे, परंतु आज का समाज तो सब उल्टा हो रहा है। तब सा तो जो गहना भी यूज करते हैं, जहां यूज नहीं करना चाहिए वो लोग वहीं करते हैं। तो कहेंगे रिंग कान में पहनना चाहिए, कभी कहा इधर वोट में पहनते हैं, कभी गाल में पहनते हैं, तो ये सब सब उल्टा होता है। कलयुग में इतना प्रभाव है, हर कार्य उल्टा ही होता है।
असली नहीं, वो भी आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल वो भी इमिटेशन है। वो भी जैसे हिरण्यकश्यप बड़े बड़े कुंडल पहनते थे, आजकल बहुत बड़े बड़े इतने बड़ा बड़ा कान पहनते हैं, जैसे अब पता नहीं चलेगा हाथ का है और कान का है, निकल कान में रख दिया था। ऐसा अभी सिविलाइजेशन ऐसा हो गया, तो ये बहुत मतलब पतन माना जाता है। तो यहां शतद्रुति को जब अलंकृत किया गया था तो वो अग्निदेव देखकर उनको प्रसन्न हो गए, वो उनको वो काम आ सकते हो गए, आकर्षित हो गए, तो उनके साथ संभोग करने के लिए वो उनका अंदर इच्छा प्रकट हो गई। तो ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण जब एक स्त्री पुरुष का संबंध होता है, ये आकर्षण आकर्षण बढ़ता है धीरे धीरे। जब ये आकर्षण तो विवाह प्रस्ताव हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है, तब ये आकर्षण जो है वो एकदम सुदृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, उसको छिन्न करना कठिन हो जाता है। तो इस श्लोक में भागवत में बताया गया है, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव एतम तयोर मिथ हृदय ग्रंथि आहो अथ गृह क्षेत्र सुताप्त व्यक्ति जनस्य मोह अयम अहम ममेति। स्त्री पुंसा मिथो, जब वो स्त्री पुरुष में संबंध हो जाता है तो उसी स्त्री पुरुष के संबंध को ही इस समाज में वो सोचते हैं यही सबसे बड़ी मतलब आनंद है। लेकिन इस जब इस विषयाशक्ति के कारण जब संबंध वृद्धि हो जाता है तब ये धीरे 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 हृदय में ग्रंथि के रूप में बदल जाता है। तो इसके कारण कि धीरे धीरे फिर विवाह हो जाता है, फिर संसार बढ़ता है, स्त्री पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, फिर धन आयोजन करने का प्लानिंग बनता है, तो धीरे 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 इसमें सुताप्ति व्यक्ति जनस्य मोह, जो संबंधियों का मोह बढ़ जाते हैं, संबंधी बढ़ जाते हैं, तो आदमी व्यक्ति धीरे 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 उस भौतिक इंद्र तृप्ति में ही फंस जाता है। तो ये जो भौतिक इंद्र तृप्ति का जो मूल बेस जो है ये विवाह प्रस्ताव, विवाह संपन्न करना, इसमें से ही व्यक्ति भौतिक बंधन में रकड़ जाता है, जकड़ जाता है। हृदय ग्रंथि आहो जनस्य मोह अयम अहम ममेति। फिर जब एक पुरुष विवाह करता है पर जब विवाह के बाद फिर उसका घर उसके ऊपर समस्या मतलब टेंशन आ जाता है, फिर घर संभालना पड़ता है, प्रॉपर्टी लेना पड़ता है, घर लेना पड़ता है, स्त्री पुत्र हो जाते हैं, उनका पढ़ाई, उनका खर्चा, फिर संबंधी बढ़ जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करना, कितना टेंशन बढ़ जाता है। तो इसके कारण वो क्या है, भौतिक जीवन से वो धीरे 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 दूर चला जाता है, भक्ति को भक्ति से अलग हो जाता है, भगवान से अलग हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि यही वास्तविक जीवन है, इसी में आनंद है, जिसके कारण वो उसी में ही फंसे रहते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है, भक्ति जीवन में बहुत बड़ा बाधक है। तो इससे निकलना बहुत बड़ी कठिन हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। इसका मूल यही है, विवाह संपन्न, विवाह करना, इसमें से ही उनका जो आसक्त बढ़ जाता है, स्नेह, जो स्नेह एक चीज होता है ये घी और तेल के समान होता है। प्रेम स्नेह में थोड़ा अंतर है, प्रेम जो है वो जल के समान है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पद्र पद्म पत्र विभाम वसा, तो जल होता है पद्म जो पत्ते में रखो तो वो उसमें अटैचमेंट नहीं होता है, वो गिर जाता है, असक्त नहीं होता है। जल है ठीक है, हाथ में लग पूछ लो हाथ में खत्म हो जाता है, परंतु घी वो इतना जल्दी नहीं जाता है, साबुन उसे लगाना पड़ता है, कितना होने के बाद फिर वो जाता है। ये जो स्नेह बंधन है वो घी के समान है, वो जब छूटता नहीं है, जब संसार बढ़ जाता है, स्त्री पुत्र हो जाता है, संतान हो जाते हैं, नाती हो जाते हैं, पौत्र हो जाते हैं, तो उनका स्नेह जो है ज्यादातर उसमें ही बढ़ता जाता है, पुत्र से ज्यादा पौत्र से स्नेह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, आसक्त हो जाता है, जिसके कारण वो इतना जल्दी छूटता नहीं है। प्रेम एक चीज होता है, प्रेम होता है तो फिर वो ठीक है, एक पुरुष स्त्री से प्रेम करता है और वो भी टूट भी जाता है कुछ समय के बाद, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, फिर अपना जो विवाह हो जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है, वो ओके हो जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। इसके इसमें थोड़ा अंतर है। तो ये स्नेह जो है परिवार से उत्पन्न होता है, ये बच्चों के प्रति जो ज्यादा स्नेह रहता है स्त्री और संतान, इसमें ही ज्यादा स्नेह लगा रहता है व्यक्ति का, जिसके कारण उससे छूटना मुश्किल हो जाता है। तो इससे छूटना बहुत बड़ी कार्य है। हमको इस जो आसक्त है संसार प्रति जो मोह है, उस मोह से हमको छोड़ना है, मोह से अलग रहना है, अनासक्त होकर कार्य करना है। ऐसा नहीं कि हम संसार छोड़ दे भाई, हम विवाह किए तो फिर बाद में भक्ति में आ गए तो सब संसार में छोड़ के हम चला जाएंगे, कहीं वन में जाएंगे या किधर आश्रम में रहकर भक्ति करेंगे, ये भी गलत है। इसमें से पाप लगता है। अपना परिवार का जो भी सबका कर्म का आधार आपके अंदर आ जाता है तो आपको कर्म भोगना पड़ता है, और सबसे बड़ी पाप ये है, क्योंकि आप अपना धर्म से विमुख हो जाते हैं, अपना धर्म का पालन नहीं किया। तो इसमें आसक्त अनासक्त रहकर कार्य करना, अन्य अभिलाषिता सुना ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूल्य से कृष्णानुकूलम भक्तिरुत्तम। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इससे हर कार्य से हमको अनासक्त होकर कार्य करना करें। अभिलाषा नहीं है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है। तो ये यहां पे अग्निदेव वो सतद्रुति को देखकर जब वो सात फेरा ले रहे थे विवाह के बाद, तो हमारा रिवाज है हर गांव में है या शहर में है कहीं भी, वो जब विवाह होता है तो फिर अग्नि को साखी रखकर हम सात फेरा लेते हैं। अग्नि सूर्य ऐसे बहुत सारे वो साखी रहते हैं, हम एक दूसरे से विवाह करते हैं। तो अग्निदेव यहां मोहित हो जाते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, और वो इतना सुंदर थी कि सारा संसार को मोहित मोह में डाल दिया, सारा संसार को देख आकर्षित हो गए। देवता ऋषि राक्षस गंधर्व कोई भी सब उधर विवाह में आए थे, आकर उनको देखना चाहते थे, परंतु क्या करे देख नहीं पाते थे, क्योंकि वो इतना अलंकार से उनका शरीर भरे थे और सिर में साड़ी थे कि वो देख नहीं सकते थे, घूंघट के कारण। कोई उनकी खड़ा रहकर देखना चाहता है, कोई कैसे देखने तो देखना चाहते हैं, पर देखते नहीं है क्योंकि सबके अंदर आकर्षण उनके प्रति हो रहा था। तो इससे पता चलता है कि चाहे देवता हो ऋषि हो या कोई भी हो, ये जो मतलब माया है, इस माया से बचना कष्ट है। स्त्री आकर्षण से बचना कष्ट है, कठिन है। ऐसे प्रभात कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक होता ही है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है उस विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि कितना बड़ा तपस्वी थे, बाद में उनको ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ, फिर भी वो जब तपस्या कर रहे थे उस समय जब स्वर्ग का अप्सरा मेनका वहां आके पहुंचा, तो उनका जो एक क्या बोलते हैं उसको कंगन का झंकार से ही उनका तपस्या टूट गया, इतना दिव्य तपस्या। हाँ, तो कभी कभी और उस समय इतना बड़ा तपस्वी है वो साधारण उनका कंगन का आवाज से ही उनका ध्यान टूट गया। तो आजकल कली युग में जो हम लोग भक्ति करते हैं, हम उनके हम क्या है, हम अपने को समझते हैं हम बहुत बड़ा इंद्र संयमी है, हम अपने इंद्र को संयम करते हैं। तो ये बहुत समझने की बात है, इसके कोई किसी को अहंकार नहीं बना कि मैं का इंद्र तरम से मैं इंद्र को जीत लिया, कोई नहीं जीत सका है, तुम क्या जीतोगे। इंद्र ब्रह्मा एवं शंकर तक भी भगवान का ये जो दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति से ही मोहित हो जाते हैं। मम माया दूरत्व है, मामेवद प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ते। परंतु एक ही दो ही व्यक्ति ही स्त्री के आकर्षण से बच सकता है, बच पाता है। तो कौन है? एक तो भगवान है और दूसरा भगवान का भक्त है। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति में स्थिर रहता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, साधु संघ में रहता है, तो वो इस माया को पार कर देता है भगवान की कृपा से। इसीलिए प्रपात कहते हैं स्त्री माया का पूर्ण रूप है। इससे से पता चलता है जो स्त्री होता है माया का पूर्ण रूप है। तो ये जनरली ये जो यहां पे जो प्रसंग चल रहा है, बात हो रहा है स्त्री के ऊपर, वो जो है भौतिक जीवन से जो लिप्त है, जो आध्यात्मिक जीवन से है उनकी बात नहीं कहा जाता। जो दुष्ट है, आध्यात्मिक जगत से बाहर है, भगवान का भजन नहीं करता है, भक्ति से विमुख है, ऐसे जीवात्मा का बात किया जाता है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, एक दूसरे के प्रति माया ही है। तो इसमें बचने का एक ही रास्ता है, भगवान का भजन। उसमें से भी कपिल मुनि भी उनके माता देवहूति को समझाते हैं, ये जो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवय विदु, तो ये जो अजर पास जो है प्रसंग जो ये मतलब प्रसंग मतलब आ सकता है भौतिक जीवन के प्रति आ सकते हैं, भौतिक पदार्थ के प्रति आ सकते हैं, यही प्रसंग प्रति। जो विद्वान कहते हैं कि ये अजर पास है उसको छीनना कठिन है, तो ये कैसे छीन सकता है? जब कोई भक्तों के प्रति आसक्त होता है। प्रसंग अजरम पासम आत्मन कवय विदु स एव साधु सकृत मुख्य द्वारम अपाहुति। जब कोई साधु संत के प्रति आसक्त रहता है, भगवान का भक्तों के प्रति आसक्त होता है, तब उसका जो ये आसक्ति जो है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है वो ऑटोमेटिक कट जाता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। हृत्कर्ण रसायन कथा, भगवान का कथा जब हम कानों से हृदय के साथ सुनते हैं, कोई शुद्ध भक्त या प्रामाणिक संतों के मुख से हम इस कथा को श्रवण करेंगे, तब इस जो भौतिक ये जो आसक्ति है इससे हम छूट सकते हैं, नहीं तो दुष्ट्य जाए। क्योंकि देवता ऋषि एक और कि ब्रह्मा शंकर जी भी इस माया से बच नहीं पाते। इस प्रकार इस श्लोक में यही वर्णन किया गया कि जब परिषद ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश प्राप्त हुआ, तब उस समय वो सतद्रुति के साथ जब विवाह करते थे, उस विवाह में जब सात फेरा लेते थे, उस समय अग्निदेव भी उनसे आसक्त होकर संभोग करने के लिए चाहा, जैसे वो सुखी के साथ करे, सुकी जो है सप्तर सिंह का पत्नी है, जब वहां उनका विवाह होता था तब ये जो अग्निदेव ने जा वो उनको देखकर वहां भी उनसे मोहित होकर और उनसे संभव करने के लिए इच्छा प्रकट की। इसके कारण उनका अग्निदेव का पत्नी स्वाहा, वो स्वाहा जो जब जाना कि इस प्रकार घटना, तब वो सुखी के रूप धारण करके वो अग्निदेव के साथ संभव की। तो इस प्रकार हम लोग अगर भक्ति में सुदृढ़ रहना चाहेंगे तो हम भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, तब हमारा इस जो भौतिक इच्छा है, भौतिक आसक्ति है, वो धीरे धीरे छिन सकता है, छिन्न हो सकता है। भगवान कहते हैं मदाश्रय कथामृष्टा स्मन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्तपा नैता मद्गतचेतसा। तो भगवान कहते हैं कि जब भी मेरा कथा श्रवण करेंगे, मेरा भक्तों संग करेंगे, तब इस जो भौतिक बंधन है वो छूट सकता है। इस रूप में यही वर्णन किया गया है और आगे में हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे कल, तो हम यही समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, बहुत
प्रेमानंद
की जय।
Thank you.
श्याम कोमल अंग पानी चला रहा हूँ इसका हाथ की जरूरत के साथ में दोनों का मिलता है
निधि वन आप निधि बोल रहे हैं